नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार ने आज कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही है। जमाखोरी या कालाबाजारी से बचने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन भी बढ़कर 50% कर दिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल शेष है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। इकाई ने सटीक जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करने का आग्रह किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारतीय जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं।
Our ships are passing through Strait of Hormuz.
हमारे कुछ जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
पिछले 6 घंटों में पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इसराइल ने ईरान के अंदर नए हमले किए हैं और लेबनान में भी अपने अभियान बढ़ाए हैं। इसराइली अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेनाओं ने मध्य ईरानी शहर इस्फहान में कई हमले किए और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर अलीरेजा तंगसिरी के मारे जाने का दावा किया है। इसराइली सेना ने उन्हें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी को बाधित करने के प्रयासों में एक प्रमुख व्यक्ति बताया। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वार्ता विफल होती है तो और भी गंभीर परिणाम होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा दे रहा है, स्टार्टअप आधारित खनन तंत्र को विकसित कर रहा है और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण तथा विकास ट्रस्ट के शासी निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में खोज में तेजी लाने, घरेलू क्षमता को मजबूत करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव तैयारियों के दौरान 400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,100 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड और 5,200 से अधिक स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आलू किसानों की बिगड़ती स्थिति और निर्यात संबंधी प्रतिबंधों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शामिक भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि बंगाल सरकार के प्रतिबंधों के कारण स्थानीय किसान अपनी उपज को अन्य राज्यों में बेच नहीं पा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज बांग्लादेश के 56वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए विशाल यादव ने 1 और उमांग डोडम ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।